Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalum pangulam gayate girim yat kripa tamaham bande sri guru dinatarini. सर्वप्रथम आप सब भक्तों के सब भक्तों को जो है मैं अपने हृदय से सब भक्तों को जो प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करते हुए और मैं आज चैतन्य चरितमृत का चरितमृत पर मैं कुछ जो है बोलने के प्रयास करूँगा। ये श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का प्रसाद है चैतन्य चरितमृत, और जब प्रसाद को कोई भक्त स्पर्श करता है तो फिर महाप्रसाद बन जाता है। तो प्रभुपाद जी ने इसको स्पर्श किया तो महाप्रसाद बन गया। तो महाप्रसाद जो है मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर की प्रसाद को लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका प्रसाद से प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी द्वारा हम जो प्रसाद जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो इस श्लोक जो लिखा है श्लोक को हम बाद में पढ़ेंगे, तो उससे पहले कि जो कुछ चीज जो है उसको हम पढ़ेंगे उसके बाद जो है हम इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन थोड़ा सबको सबर रखना पड़ेगा। कि क्या क्या जैसे कहावत भी इधर है इधर इस तरफ की जो है सबर की जो अगर हम लोग प्रतीक्षा करते हैं इसका फल जो है बहुत मीठा होता है। तो हम लोग धैर्य धारण करेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुष कृपा से जो हमें कुछ जो है फिर मिठास जो है अनुभव होगा। तो हम लोग जो है पीछे का श्लोकों कुछ पढ़ेंगे तो आप लोग सुनिए, उसके बाद फिर हम इसमें जो है चर्चा करेंगे। श्याम कृष्ण प्रभु ये जो है 71 से है। मणि ये अविकृति प्रसव हेम भार जगत रूपे हय ईश्वर तबु अभिकार। पारस पत्थर लोहे के स्पर्श करके ढेरों सोना उत्पन्न करते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित बना रहता है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं किंतु उनका सनातन दिव्य स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। शिल भक्त तात्पर्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भाष्य के अनुसार वेदांत सूत्र के जन्म आदि यश अत श्लोक का उद्देश्य यह स्थापित करता है कि विराट जगत की अभिव्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियों के रूपांतर के कारण है। भगवान असंख्य शाश्वत शक्तियों के स्वामी हैं और ये शक्तियाँ असीम हैं। ये शक्तियाँ कभी प्रकट होती है और कभी नहीं होती किंतु प्रत्यक्ष दशा में सारी शक्तियाँ उन्हीं के अधीन रहती हैं। इसलिए वे आदि शक्तिमान हैं अर्थात समस्त शक्तियों का स्रोत है। बद्ध अवस्था में साधारण बुद्धि यह सोच ही नहीं पाता कि इतने अचिंत्य शक्तियाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कैसे स्थित रहती हैं और वे किस प्रकार असंख्य रूपों में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी बने रहते हैं। किस तरह वे व्यक्त तथा अव्यक्त स्वामी शक्तियों के स्वामी हैं और किस तरह विरोधी शक्तियों उनमें वास करती है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में मोहावस्था में रहता है वो भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कार्यकलाप को नहीं समझ सकता। इस तरह भगवान की शक्तियाँ वास्तविक होते हुए भी साधारण मस्तिष्कों की समझ से परे रहती है। जब नास्तिक दार्शनिक या मायावादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अचिंत्य शक्तियों को ना समझ पाने के कारण निर्विशेष शून्य की कल्पना करते हैं तब उनकी यह कल्पना भौतिकतावादी चिंतन का एक प्रतिरूप ही होता है। भौतिक जगत में कुछ भी अचिंत्य नहीं है। बहुत बुद्धिमान दार्शनिक तथा दार्शनिक भौतिक शक्ति को तो वश में कर सकते हैं किंतु आध्यात्मिक शक्ति को ना समझ पाने के कारण वे केवल निष्क्रियता अवस्था की यथा निर्विशेष ब्रह्म की ही कल्पना कर सकते हैं। या तो भौतिक जीवन का केवल नकारात्मक पक्ष है। ऐसे भूषण ज्ञान से मायावी दार्शनिक इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विराट जगत सर्वोपरि का रूपांतर है, अतः वे सर्वोपरि के मोहग्रस्त होने विवर्तवाद सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। किंतु यदि वो भगवान के अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करें तो यह समझ सकते हैं कि किस तरह पूर्ण पुरुष भगवान भौतिक शक्तियों के तीनों गुणों से दूषित हुए बिना, उनका स्पर्श किए बिना इस भौतिक जगत में प्रकट हो सकते हैं। शास्त्रों से विदित होता है कि पारस पत्थर नामक एक मणि होती है जो लोहे को सोने में बदल सकती है। यह मणि लोहे के अनेक बार सोने में बदलने पर भी अपने मूल स्थिति में रहती है। यदि ऐसे मस्तिकों मणि प्रचुर सोना उत्पन्न करने पर भी अपनी अचिंत्य शक्तियां बनाए रख सकती हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही विराट जगत के सृष्टि करने के बाद भी अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप बनाए रख सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा ही कार्य करते हैं। मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेते से चराचरम, कृष्ण भौतिक शक्ति के संचालन करते हैं और यह शक्ति इस भौतिक जगत में कार्य करती है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। सृष्टि स्थित प्रलय साधना शक्ति रेक छाय यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा शक्ति भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और वह ब्रह्मांड के सृष्टि उसके भरण दस संहार की कार्य करती है। कृष्ण पृष्ठभूमि में निर्देशित करते हैं। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति के निर्देशन करते हुए भी जिससे विविध विराट जगत इतनी कुशलता से कार्य करती है यथारूप रहते हैं। व्यास भ्रांति बोली से ही सूत्रोद्वेश दिल विवर्तवाद स्थापित अच्छे कल्पना करिया। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम शक्ति रूपांतरित होती है। इस सिद्धांत का बल पर मायावादी दार्शनिक शिल व्यासदेव में दोष दिखलाते हैं, उन्हें नीचे दिखाते हैं। इस तरह वे वेदांत सूत्र में त्रुटि निकालते हैं और विवर्तवाद की स्थापना करने हेतु वे इस विषय में अपना अर्थ लगाते हैं। ब्रह्मसूत्र का पहला अर्थ है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमें परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में इसका उत्तर है जन्म आदि यस्यत परम सत्य ही सबके मूल स्रोत है। इस श्लोक में जन्म आदि यस्यत का यह अर्थ नहीं है कि आदि पुरुष रूपांतरित हो गए, प्रतीत यह स्पष्ट इंगित करता है कि वे अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। भगवद्गीता में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है, जहाँ कृष्ण कहते हैं मत्ता सर्व प्रवर्तन्ते मुझसे ही सब उद्भूत होती है। तैतृय उपनिषद से भी इसकी पुष्टि होती है यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते परम सत्य वे है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है यथोर्ना विसृजन्ति गुह्यन्ति च, भगवान इस भौतिक जगत के इसी प्रकार सृजन तथा संहार करते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बुनती है और बाद में वे उसे अपने ही समेट लेते हैं। ये सारे सूत्र भगवान की शक्ति के रूपांतरित के सूचक है। ऐसा नहीं है कि स्वयं भगवान में प्रत्यक्ष रूपांतरित होता है जो परिणामवाद कहलाता है, किंतु श्रील व्यासदेव को आलोचना से बचाने के लिए शंकराचार्य ने छत्म भद्रपुरुष बनकर विवर्तवाद प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने परिणामवाद को या अर्थ गढ़ा और शब्द जाल के द्वारा परिणामवाद को विवर्तवाद के रूप में स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। जीव और देह आत्मा बुद्धि यही मिथ्या है, जगत ये मिथ्या न है, ईश्वर मात्र है। विवर्तवादी तभी प्रभावी होती है जब जीव अपनी पहचान शरीर के रूप में करता है, किंतु जहाँ तक विराट जगत का संबंध है वो मिथ्या नहीं कहा जा सकता है, वे या नश्वर अवश्य है। जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, भगवान का अंश होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में आकर वह अपने पहचान स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करता है। ऐसा पहचान निश्चय ही मिथ्या है और विवर्तवाद का आधार बनती है। जीव नित्य है,
इस पर काल का प्रभाव नहीं हो सकता, किंतु इसका स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर पर काल का प्रभाव होता है। विराट जगत कभी मिथ्या नहीं है, किंतु काल के प्रभाव के कारण यह परिवर्तनशील है। इस जगत को अपने इंद्रिय तृप्ति के साधन स्वीकार करना निश्चित रूप से मोह भ्रम है। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवद गीता में कृष्ण ने इसकी व्याख्या की है, भूमि रप नल वायु खम मन बुद्धि रे वच अहंकार इतिमे भिन्न प्रकृति रष्टा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये सभी आठ मेरे भिन्न शक्ति भौतिक शक्तियाँ हैं। भौतिक जगत पूर्ण कृष्ण भगवान के अपरा निकृष्ट शक्ति है, किंतु यह कहना सही नहीं है कि परम भगवान इस भौतिक जगत में रूपांतरित हो गए। मायावादी दार्शनिकों ने वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण विवर्तवाद या परिणामवाद के सिद्धांत को वाक जाल से व्यस्त अस्त व्यस्त कर दिया है। विवर्तवाद इस व्यक्ति पर प्रभावी होती है जो अपने पहचान शरीर के रूप में करते हैं। जीव परम भगवान की उच्चतर शक्ति है, भौतिक जगत उनके निकृष्ट शक्ति है, किंतु दोनों प्रकृति शक्ति ही है। यद्यपि सारे शक्तियाँ भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न है, अतः भगवान अपने विभिन्न शक्तियों के रूपांतरित होने पर भी कभी भी अपने व्यक्तिगत साकार स्वरूप को नहीं त्यागते। प्रणव ये महावाक्य ईश्वर मूर्ति है, प्रणव है ते सर्पद्वेद जगत उत्पल जगत उत्पत्ति। ओमकार का दिव्य ध्वनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द रूप है। सारे वैदिक ज्ञान का विराट जगत भगवान की शब्द रूप से उत्पन्न होता है। ओमकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द स्वरूप है। उनका पवित्र नाम का यह रूप दिव्य ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके कारण वह नश्वर जगत उत्पन्न हुआ। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द प्रतिनिधि ओंकार को स्वीकार शरण ग्रहण करता है, तभी वो अपने वैधानिक स्थिति को साक्षात्कार कर सकता है और बद जीवन में रहते हुए भी भक्ति में लग सकता है। तत्त्वमसि जीव हेतु प्रदर्शिक वाक्य प्रणवना मान्यता कहे महावाक्य। तत्त्वमसि तुम वही हो गौण शब्द प्रदर्शक वाक्य जीव को जानकारी के लिए, किंतु मुख्य ध्वनि ओंकार है। शंकराचार्य ने ओंकार का महत्व ना देकर तत्त्वमसि ध्यान पर बल दिया है। भगवान के पवित्र नाम के दिव्य ध्वनि अवतार प्रणव के वैदिक साहित्य के मुख्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार ना करने वाले व्यक्ति तत्त्वमसि को मूल ध्वनि मानते हैं। शंकराचार्य ने शब्दाडंबर के द्वारा जीव तथा जगत के साथ पूर्ण पुरुष भगवान का भ्रामक संबंध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तत्त्वमसि जीव के लिए चेतावनी है कि वह शरीर को आत्मा मानने को भूल ना करें। अतएव तत्त्वमसि विशेष रूप से बद आत्मा के लिए है। ओम कार्य हरे कृष्ण मंत्र का जप मुक्त आत्माओं के लिए है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि अयि मुक्त कुल रूपस्य मानम नामाष्ट। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मुक्त आत्मा करती है। इस पर परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत तृष्ण उपगीयमाना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकता है जो भौतिक इच्छाओं के पूर्णतया भौतिक इच्छाओं को पूर्ति पूर्णतया कर चुके हैं, जो दिव्य पद को प्राप्त है और भौतिक इच्छा से रहते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकता है जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। शंकराचार्य ने गौण शब्द तत्त्वमसि को सबसे महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र मानकर के मुख्य वैदिक मंत्र का ओंकार को महत्व घटाया। यही मध्य कल्पित भाष्य ये तो दोष दिलो भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपेक्षा कर लो। बस एक का तात्पर्य इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर आलोचना की और उसमें सैकड़ों दोष दिखलाया, कि सर्वम भट्टाचार्य के शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए उनके तर्क प्रस्तुत किए। पितंड छल निग्रह आदि अनेक उठाइल सब गुण प्रभु निज मत से स्थापित। भट्टाचार्य ने तर्क छद्म तर्क समेत विभिन्न प्रकार के तर्क मिथ्या तर्क प्रस्तुत किए और अपने प्रतिपक्ष को हराने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने सारे तर्कों को खंडित किया और अपने मत स्थापित किया। वितंड शब्द का अर्थ यह है कि शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने सिद्ध करने के बदले दूसरे व्यक्ति को तर्क को काटने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति मुख्य बात पर ध्यान ना देकर गलत अर्थ लगाकर ध्यान भटाता चाहता है तो वह छल कहलाता है। निग्रह का अर्थ है, निग्रह का अर्थ भी विपक्षी तर्कों को खंडन करने का प्रयास है। भगवान संबंधी भक्ति अभिधेय हो प्रेम प्रयोजन वेद तीन वस्तु कह। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी वस्तु संबंधों के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके भक्ति करना अभिधेय मनुष्यों का वास्तविक कर्म है और भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैदिक साहित्य में तीनों विषयों का वर्णन हुआ है। भगवद्गीता से इस कथन की पुष्टि होती है कि वेदस्य सर्व अहम एव वेद, वेदों का अध्ययन करने का वास्तविक प्रयोजन यह जानना है कि मनमना और मदभक्तों किस प्रकार भक्त बना जाए। मनमना भक्त भगवत भक्त किस तरह बना जाए, स्वयं भगवान का उपदेश है, मनमना भव मदभक्तो मज्जादिमा नमस्कुरु। अतः वेदों का अध्ययन करने वाले मनुष्यों को भगवान के विषय में सदैव चिंतन करते हुए मनमना उनका भक्त बनकर उनकी पूजा करके और उन्हें सदैव नमस्कार करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसे विष्णु आराधना कहते हैं और यह सभी मनुष्यों के सर्वोपरि कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली समाज के ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभक्त करती है। वर्णाश्रम धर्म में इसकी उचित प्रकार से पालन किया जाता है। वैदिक सभ्यता का ये पूर्ण प्रयोजन है। इस युग में इस प्रणाली को स्थापना कर पाना तो कठिन है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है कि हमें वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली को चिंतन ना करें प्रत्युत हमें सीधे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और शुभ भक्तों से परम पुरुष भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को संस्तुति की है और वेदों का अध्ययन करने का यही प्रयोजन है। आरो ये किछु कह सकल कल्पित सत्य प्रमाण वेद वाक्य कल्पना लक्षण। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य में विवेचना करने की चेष्टा करता है वो मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण स्वरूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने एक पूर्व कल्पना ही समझना चाहिए। जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तब वो भक्त बन जाता है। भक्त का एकमात्र संबंध पूर्ण कृष्ण भगवान के साथ रहना है और उनका एकमात्र धर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्ति करना है। यह सेवा भगवान के प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से की जाती है। यस्य देव पराभक्ति यथा देव तथा गुरु। उचित रीति से भक्ति करने पर भक्त को जीवन के सर्वोच्च भगवत प्रेम प्राप्ति होती है। सबे पुंसा परो धर्म यज्ञ भक्ति अध्यक्ष। वेदों का समझने का चरम उद्देश्य भगवान की भक्ति में सेवा करने के पद तक ऊपर उठना है, किंतु मायावाद दार्शनिक निर्विशेष ब्रह्म को संबंध और केंद्र बिंदु मानते हैं और जीवों का कर्म अभिधेय ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। वे ज्ञान का परिणाम भौतिक कर्म से विरक्त मानते हैं, तब मुक्त अथवा परम में समा जाने को जीवन का चरम लक्ष्य प्रयोजन मानते हैं, किंतु यह सब बद्ध जीवों की कल्पना मात्र है। इससे मात्र भौतिक कार्यों का निषेध होता है। मनुष्यों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि सारे वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाणित है। वैदिक श्लोक का अर्थ लगाने का किसी को अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उसका कल्पना मानना जाएगा। इसे कोई महत्व नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जीव जागो गौरा चंद्र बोले तो हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग ये प्रयार पढ़ेंगे तो आप लोग भी जो है हमारे साथ इसको दोहराइए। और आज जो है इस जो चैतन्य चरितमृत का कक्षा में जहाँ पे जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पे जो हरिगिरि प्रभु उपस्थित हैं उनका भी जो हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करूँगा। और हरिगिरि प्रभु बहुत पुराने भक्त हैं और जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और मुझे जो प्रभु जी ने न्यू भक्ता ट्रेनिंग जो है प्रभु जी ने दिए थे, तो फिर भी जो है बड़ी उदारता है कि यहाँ पे कुछ जो है अपने शिष्यों के मुख से जो है चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ अच्छे विचार जो हम लोग इसमें जो कर सकें। तो अभी हम लोग इसको दोहराएंगे, आप लोग हमारे पीछे बोलाइए, बोलिए। आचार्य र दोष नाही ईश्वर आज्ञा है लो, आचार्य र दोष नाही ईश्वर आज्ञा है लो, अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र के ल, अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र के ल, इसका शब्दार्थ आचार्यों, आचार्यों का दोष दोष नहीं नहीं ईश्वर आज्ञा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा हेलो थी, अतएव अतएव कल्पना कल्पना करी करके नास्तिक नास्तिक शास्त्र शास्त्र केलो तैयार किए। अनुवाद सुनिए, वास्तव में इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, केवल उन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन किया, उन्हीं किसी ने किस प्रकार का अनुमान की कल्पना करनी थी, उन्हें किसी ना किसी प्रकार से अनुमान की कल्पना करनी थी, अतएव उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जो पूर्णतया नास्तिक है। तो यहाँ पर महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को जो है बता रहे कि इसको आज के श्लोक को प्रयास को समझने के लिए हमें पीछे को जाना पड़ेगा, तो तब जाके जो श्लोक जो पूर्ण रूप से समझ आएगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु अद्वैत अद्वैत भाष्य सुनने के उपरांत महाप्रभु जो है कुछ उनकी बात सुने नहीं, तो महाप्रभु जो है उनको जो है असली कृपा करने के लिए महाप्रभु ने उनको जो है फिर अपनी बातें जो है बताने लगे। एक एक रूप से महाप्रभु अद्वैत सिद्धांत सिद्धांत को निकाल कर भगवान की भक्ति जो है वो जो है देना चाह रहे थे। भगवान की भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, भगवान स्वामी है और हम सब जो दास है, ये महाप्रभु का सिखाने का उद्देश्य था। तो इसीलिए महाप्रभु ने उनको जो है ये सब उन इतना बड़ा बीड़ा उठाया महाप्रभु ने एक जो है सर्वम भट्टाचार्य को भक्त बनाने के लिए। तो वास्तव में जो कहा जाता है कि शिकार करना था गेंदे का शिकार करना चाहिए, तो महाप्रभु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य से शिकार के सबसे पहले उन्हीं पे जो है अपने अपना अटैक किए जो वैष्णव सिद्धांत का। तो उसमें जब महाप्रभु कई तरीके से बता रहे थे, तो मायावाद मायावाद भाष्य को जो महाप्रभु जो खंडन कर रहे हैं, तो इसमें जो इस प्रकार से प्रसंग जो चल रहा है कि सर्वम भट्टाचार्य ने भगवान को जो है भगवान को ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अपनी भाष्यों को जो है बताने लगे, और साथ में जो भगवान को निराकार बताते हुए भगवान कोई है ही नहीं, भगवान जो है अपना विस्तार करके सब जो है सब भगवान बट गए हैं जगत के रूप में, वो बट गए हैं। तो इस बात को महाप्रभु जो है जो जो इस बात को महाप्रभु जो है क्या कह रहे हम सुनेंगे। तो मणि एछे अविकृति प्रसव हेम भार, जगत रूपे हय ईश्वर तबु अभिकार। महाप्रभु ने कहा ये साधारण सा एक मणि जो है भौतिक मणि पारस मणि ये लाखों सोना उत्पन्न कर देती है, उत्पन्न करने पर भी उसका उसमें कोई जो है उसमें कोई विकार नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही बना रहता है पारसमणि। तो एक तुच्छ पारसमणि अगर इस प्रकार से कर सकता है तो भगवान जो है जो परम भगवान ये सृष्टि को उत्पन्न करके कैसे भगवान जो है समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान तो सत्य चित्त आनंदमय है, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। तो भगवान जो है चिंतामणि है, तो एक साधारण चिंतामणि अगर सोना उगलने के बाद समाप्त नहीं होता तो भगवान भी जो है जो भगवान चिन्मय भगवान जो है वो जगत को प्रकट करने के बाद अपने से सारा जगत को प्रकट करने के बाद कभी भी जो है वो समाप्त नहीं हो सकते हैं। ये आपके सिद्धांत जो है गलत है। और फिर महाप्रभु ने कहा ये क्यों कह रहे हैं इस प्रकार से, आपकी जो भाष्य आपने ये मुझे सुनाया ना कि जो है भगवान जो है एक थे और जो बट गए तो समाप्त हो गया, तो आप ये कह रहे कि महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे बता रहे और आपके जो पूर्ववर्ती आचार्य है वो क्या लिखते हैं अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में, वेदांत सूत्र के भाष्य में जो क्या लिखते हैं, हाँ जो क्या लिखते हैं, व्यास भ्रांत बोली से सूत्र दोषे दिया विवर्तवाद स्थापी अच्छे कल्पना करिया। जो है इसी में जो ये जो मायावाद सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि व्यासदेव जो है भ्रमित हो गए, जो स्वयं शास्त्र का संकलन करता व्यासदेव जी ही भ्रमित हो गए, उनको जो दोष देते हैं कि वो जो भ्रमित जब शास्त्र लिख रहे थे उस समय जो भ्रमित हो गए। अगर व्यासदेव जी भ्रमित हो गए उनके ही वेदांत सूत्र के ऊपर तुमने भाष्य लिखा, ये किस काम का रहा, ये किस काम का जो है आपका रहा, तो ये भी जो कहना आप लोगों का गलत है। और इस पर कहकर फिर उन्होंने क्या किया, एक विवर्तवाद का स्थापित किए शंकराचार्य जी ने विवर्तवाद की जो है स्थापित किया, विवर्तवाद स्थापित अच्छे कल्पना करिया, अपने मन कल्पनाओं से उन्होंने विवर्तवाद को स्थापना किया। अर्थात जो स्पष्ट रूप से एक होता है परिणामवाद और एक होता है विवर्तवाद। परिणामवाद का मतलब है कि एज इट इज जो वेदांत सूत्र कहा है उसको तो सीधा सीधा स्वीकार करो, इसको इसमें मनोकल्पना डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मनोकल्पना डाल दिए इसको विवर्तवाद कहा जाता है, अर्थात इसमें आपकी मनो की कल्पना प्रवेश कर गया। तो इसीलिए जो सीधा सीधा अर्थ को जो है स्वीकार करना चाहिए। और विवर्तवाद का अर्थ है कि विवर्तवाद का अर्थ है कि शरीर को आत्मा मान बैठना, ये विवर्तवाद है। शरीर भौतिक है, शरीर पंच भौतिक से बना हुआ है, इसको अगर हम कल्पना करेंगे इसमें हम कुछ कल्पना डाल देते हैं तो इसी को जो है विवर्तवाद कहा जाता है। इसके ऊपर अगर हम लोग कहीं व्याख्या करेंगे कि शरीर को आत्मा सिद्ध करने के लिए, साधारणतः लोग जो संसार में यही जो प्रचार करते हैं शरीर को जो है आत्मा घोषित करते हैं। कौन कहता है शरीर एक दिन जो है नाश हो जाएगा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, कोई बेकार है, किसी काम का नहीं है। जो वास्तव में जो ब्रह्मनिष्ठ भक्त होते हैं तो वही लोग जो समझ पाते हैं कि शरीर एक दिन तुच्छ है। जैसे एक ऋषि है जो कि जो अपने लिए जो कुटिया भी नहीं बनाते हैं। क्या नाम है पूजन का? लोमस ऋषि जी। हाँ, वो जो अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि शरीर जो है नाशवान है, किस लिए ये सब चीजें करनी चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग किसी ज्ञान के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से हम ये देना बताना चाहेंगे, जो ये शरीर जो है आत्मा है, इन कल्पना भाष्यों को विवर्तवाद कहा जाता है। फिर जो है बताया गया कि महाप्रभु फिर कह रहे हैं, जीवर देह आत्मा बुद्धि यही मिथ्या है, जगत है मिथ्या नए, ईश्वर मात्र है न स्वर मात्र है। तो मायावादी भाष्य इस प्रकार से लोग बताते कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो महाप्रभु कह रहे ऐसी बात नहीं है, ये जगत जो है जगत मिथ्या नहीं है, जगत जो है ये नश्वर है, इसे कुछ समय बाद जो है इसका नाश हो जाता है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, जगत जो है मिथ्या नहीं है। और जो देह में आत्मबुद्धि का जो आप लोगों का ज्ञान है, ये भी जो है आप लोगों का ज्ञान जो है ये भी गलत है। तो एक एक करके जो उनकी बातों को जो है महाप्रभु जब काटना शुरू करें, और एक बहुत विशेष और एक बात महाप्रभु बताते हैं, प्रणव ये महावाक्य ईश्वर र मूर्ति, प्रणव होते सर्ववेद जगत उत्पत्ति। जो प्रणव स्वरूप है, जो प्रणव है यानी कि ओमकार, इसको वेदों में कहा, इसको महावाक्य कहा गया है, वेदों में इसको महावाक्य कहा गया है, क्योंकि ये ओमकार से ही जो जगत की उत्पत्ति हुई है, ये वेदों में कहा गया है। तो देखिए उसी वेद, जिस वेदों की बात सर्वम भट्टाचार्य जी महाप्रभु कहा, और महाप्रभु उसी वेदों के वाक्य से ही जो उनको जो है सही चीज को जो परिणाम बाद है उनको स्थापित कर रहे हैं। तो कह रहे जैसे कि ओमकार से जगत की सृष्टि हुई है, ओमकार जो है वो भगवान का स्वरूप है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान के नाम में या भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार है जो है ओम में और भगवान में जो है कोई अंतर नहीं है। तो जगत जो है उसी से जो है उत्पत्ति हुई, और यही जो वेदों की जो महावाक्य है, सबसे महावाक्य है कि आपका जो उद्धार हो सकता है जब आप ओम का जप करोगे, इसे जो है आपका उद्धार हो सकता है। तो इस पर कहने पर फिर महाप्रभु बताते हैं कि लेकिन शंकराचार्य ने महावाक्य क्या कहा कि तत्वमसि, महावाक्य ओम नहीं है, तत्वमसि जो ये महावाक्य है, तत्वमसि जीव हेतु प्रसादिक वाक्य प्रणवना माने ताहा करे महावाक्य। तो उन्होंने तत्वमसि जो जीवों के लिए आया है, अर्थात तुम उसी के हो, तुम जो है भगवान के हो, तत्वमसि का यही अर्थ होता है। लेकिन शंकराचार्य ने तत्वमसि को ओमकार को महत्व ना देकर तत्वमसि को महत्व दिए, तो इस प्रकार ये भी जो है एक कमी जो है दिखा दिए। तो महाप्रभु ने कहा फिर यही मते कल्पना भाष्य सत्य दोष दिल भट्टाचार पूर्व पक्ष अपार करिल। महाप्रभु तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का कहते हैं कि इस प्रकार जो महाप्रभु ने हजारों हजारों बातें जो है कई प्रकार के बताकर उनमें जो है दोष दिखाए, शंकर भाष्य में दोष दिखाए। तो दिखाने पर सर्वम भट्टाचार्य अच्छा नहीं लगा, कैसे अच्छा लगेगा, सारा जीवन जो उसमें उन्होंने व्यतीत किए कैसे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने भी क्या किए, उन्होंने भी जो है अपनी जो है पूर्व पक्ष लेकर, या पहले जो बात बताए थे उन बातों को दोबारा जो वे कह रहे थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वित्तंड छल निग्रह आदि अनेक उठाइल सब खंडी प्रभु निज मत मत से स्थापिल। तो विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के मत देकर सर्वम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु की बातों को खंडन करना चाहा, लेकिन तभी जो है महाप्रभु ने महाप्रभु उनकी सारी बातों को खंडन करते हुए अपनी मत को जो है स्थापित किए। ये जो है यहाँ चल रहा है। तो इसमें कहा गया है वित्तंड छल और निग्रह, ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो जो शास्त्रों को समझने के लिए उपयोग शास्त्रों को समझने के लिए अर्थात तर्क आदि में ऐसे उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है सर्वम भट्टाचार्य ने तर्क किए। तो प्रभुपाद जी जो है लिखते कि वित्तंड का मतलब है कि हाँ जो मैंने जो पहले जो बात कह चुका हूँ उसको स्थापित करने को उसको वित्तंड कहा जाता है। तो वित्तंड सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो कुछ कहा उसको सिद्ध करने का वो प्रयास कर रहे थे, एक है। और दूसरा है छल, तो छल से भी जो प्रयास कर रहे थे कि महाप्रभु को अपनी बातों को स्थापित करने के लिए कि अपनी बातों को स्थापित करने के लिए। छल का मतलब है कि अपनी मुख्य बातों को ना कहकर उसे गलत अर्थ लगाना। तो गलत ढंग से भी जो है मुख्य अर्थ से हटकर गलत अर्थ से भी महाप्रभु की अपनी वाक्यों को सिद्ध करना चाह रहे थे। और तीसरा निगम निग्रह आदि, निग्रह का मतलब है कि अन्य को बातों को खंडन करना। तो दूसरे के बातों को खंडन करते हुए गलत अर्थों को लगाते हुए और अपनी बातों को सिद्ध करने का चेष्टा करना, इस प्रकार से महाप्रभु के हर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब भी जो है वो जो है सफल नहीं हुए। तभी महाप्रभु ने की सारी बातों को जो है परास्त कर दिए। फिर बताते महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहते भगवान संबंधी भक्ति अभिधेय है प्रेम प्रयोजन वेद तीनी वस्तु कय। तो सभी वेदों में सभी शास्त्र में तीन वस्तु का ही जो है वर्णन है। चाहे जितने भी हम चीज़ें जो है ज्ञान अर्जित करें शास्त्र पढ़ के वेद पढ़ के, उसका तीन ही है कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे भगवद्गीता में कहा गया है वेदेश्च सर्व अहमेव वेद। जब जीवात्मा ये समझे कि वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, अगर भगवान को जानने का प्रयास करता है तो वह संबंध उसको संबंध कहा जाता है, भगवान को जानने का प्रयास करना। वेदेश्च सर्व अहमेव वेद, तो सभी शास्त्रों का यही उद्देश्य है, भागवतम गीता वेद रामायण पुराण सबका यही उद्देश्य है कि भगवान से अपनी संबंध स्थापित करें। तो वेदों का भी जो है कि चारों वेदों का भी यही उद्देश्य है कि संबंध। तो जैसे महाप्रभु कह रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य सिर हिला रहे थे, हाँ ठीक कह रहे, संबंध है अभिधेय भी है और प्रयोजन भी है, तीनों हैं। तो संबंध, तो प्रभुपाद बता, संबंध का अर्थ है कि वेदस्य सर्व अहमेव वेद, भगवान को जानना, वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, इसको संबंध कहा जाता है। और अभिधेय क्या है, अभिधेय है कि मनमना भव मद भक्तो मद जाति मा नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का भक्त बनना और जो उनको समर्पण करना, ये इसको कहा जाता है अभिधेय। और प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन है कि भगवान के प्रति भक्ति करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। तो हम जैसे गौड़िया वैष्णव है, हम लोग संबंध अभिधेय प्रयोजन की जो है यही हमारा जीवन का जो लक्ष्य होता है कि प्रयोजन क्या हमारा कि भगवत प्रेम प्राप्त करना। और वेदों का भी जो है यही उद्देश्य है। तो ये जो महाप्रभु जो उनको बता रहे थे प्रभुपाद बता रहे प्रभुपाद बता रहे कि मायावाद लोग भी जो क्या करते हैं, अपना संबंध अभिधेय प्रयोजन कैसे क्या क्या बनाते हैं कि ब्रह्म जो है उनका जीवन का जो केंद्र बिंदु जो है वो ब्रह्म होता है, उसको संबंध कहा जाता है। और भौतिक कर्म और जीव का कर्म और ब्रह्म ज्ञान, जो इसका जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, जीवों की कर्मों की चर्चा, भौतिक जो जो जीव की कर्म की ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को अभिधेय कहा जाता, अभिधेय कहते हैं। और ब्रह्म में लीन होना उसको प्रयोजन जो है, इस प्रकार जो मायावादी लोग जो है मानते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य जो है बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि ब्रह्म की, किंतु इस वेदों में सब कहा गया है और जब वर्णाश्रम में जो लोग रहते हैं उनको इसका पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये असंभव है। किंतु इस युग में इस प्रणाली की स्थापना कर पाना अत्यंत कठिन है ना, कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु परामर्श देते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली को चिंता ना करें, प्रत्युत हमें सीधे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुद्ध भक्तों से परम पुरुष भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी विधि की संस्तुति की है और वेदों का अध्ययन का करने का यही प्रयोजन है। आर ये किचु कहे सकल ये कल्पना स्वत प्रमाण वेद वाक्य कल्पना लक्षण। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य को विवेचना करने की चेष्टा करता है तो वो मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण वेद, स्वतः प्रमाण रूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने की कोरी कल्पना समझना चाहिए। तो सीधी सीधी बातें जो है ये मानना सबसे जो है अच्छा रहता। ये कहने के बाद फिर महाप्रभु ने उनको कहा, देखो शंकराचार्य का जो है कोई दोष नहीं है, शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, वो तो केवल भगवान का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ईश्वर आज्ञा है, भगवान ने उन्हें आदेश दिया था, भगवान उन्हें आदेश दिया इसलिए जो है वो कह रहे हैं। अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र के लो, अतएव उन्होंने जो कल्पना करके उन्होंने जो है मायावाद जो है मायावाद सिद्धांत को उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार शंकराचार्य ने ये कार्य किया, इसलिए उनका कोई जो है दोष नहीं है। इस प्रकार जो महाप्रभु जो है शंकराचार्य के प्रति भी अपना आदर जो है वो व्यक्त कर रहे, क्योंकि स्वयं ईश्वर है, उन्होंने ही आदेश दिया कि आप जो है ये जो है मायावाद शास्त्रों की रचना करो। और इस प्रकार जो है, लेकिन वो शास्त्र जो है वो शास्त्र अगर कोई पढ़ेगा तो उसका जो है सर्वनाश हो जाएगा। नास्तिक शास्त्र अर्थात भगवान से कोई प्रेम भावना नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, इस प्रकार जो है जब अगर कोई सुनेगा तो फिर वो अपना आत्महत्या करने के समान है। तो वो जो है जो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक तथाकथित आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए भी उसको जो है एक नास्तिक भावना ही रखेंगे। जब भगवान का रूप को नहीं मानेंगे, भगवान का स्वरूप को नहीं मानेंगे, तो क्या वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये इसी बात को जो महाप्रभु महाप्रभु ने इस बात को यहाँ पे कहा, शंकराचार्य कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो है इस चीज़ों को क्या क्या बताया, जैसे कि भगवान का स्वरूप के विषय में भगवान जो है शाश्वत है और ओमकार जो है महावाक्य है, बाकी पीछे बहुत सारे बातों जो है उन्होंने बताया। पहले गोपीनाथ आचार्य ने सब कुछ बताया था, सब कुछ बताया, लेकिन जो उनके जो समझ नहीं आए, आज स्वयं भगवान से जब सुने तो उनको जो है अभी समझ आएगी। तो फिर जो है इसके आगे प्रयारों को जो हम लोग जो है बाद में लेंगे कि भगवान ने कब किस समय जो है शिव जी को उन्होंने आदेश दिया था, आप जाके मायावाद भाष्य जो है लिखे, मायावाद भाष्य का प्रचार करें। तो पद्म पुराण में जो लिखा हुआ है, तो आगे की बातों को जो हम जो बाद में लेंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो चुका है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री आधार अधिकारण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, ताई गौर विमानंदे।